कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योएल नबी की पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओं, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारे से मैं, गाऊं शुक्र
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने परिवारों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो पुराने नियम की पुस्तक है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि टिड्डियों ने उनके देश में गेहूं, अंजीर और दाख की फसलें नष्ट कर दी थी और परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए ना तो अन्न था, ना अर्घ के लिए दाख मधु था, शराब पीने के लिए दाख मधु भी नहीं था। उनका पाप था कि वे बहुत अधिक दाख मधु पीते थे और नशे के कारण न्याय बिगाड़ते थे। उनकी बुद्धि काम नहीं करती थी, अतः योएल उन्हें 10 निर्देश देता है कि वे परमेश्वर के भवन में विलाप करते हुए एकत्र हों, तो परमेश्वर उनका पुनरुद्वार करेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। मेरे मित्रों, हमने इन बातों को देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम इस जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सकें, आपको आदर दे सकें। इस समय जब हम आपके जीवित और सामर्थी वचन में से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके वचन से मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि वे जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए, प्रत्येक श्रोता से बोलने और बातचीत करने पाए, हमें सिखाने और समझाने पाए। पिताजी, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। आप उनके जीवन में अपनी शांति और आनंद दें, बीमारियों से छुटकारा दें, ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम को धन्य कहने पाए। इस समय हमारे अध्ययन पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु के दिन की प्रतीक्षा। जी हां, योएल बड़ी कुशलता से स्थानीय परिस्थिति, टिड्डियों के दृश्य से आगे बढ़कर युग के अंत में प्रभु के दिन की ओर निहारता है। आइए हम पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक 1:15। योएल 1:15 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। ध्यान दीजिए, लिखा है उस दिन के कारण हाय। योएल, आप किस दिन की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। उस भावी समय का इन टिड्डियों द्वारा एक छोटा सा प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। यह यहोवा के दिन का पूर्व सूचक था और यहूदा वासियों के लिए एक चेतावनी भी थी। अब योएल भविष्य की चर्चा करेगा जो दाऊद को प्रतिज्ञा में कही गई थी। यह एक राज्य है, दाऊद उस राज्य में शासन करने के लिए फिर जी उठेगा, युद्ध समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी पर शांति व्याप्त होगी। सब भविष्यद्वक्ताओं का यही कहना था। उन्होंने योएल द्वारा व्यक्त यहोवा के दिन के आगमन की भी चर्चा की थी। जी हाँ, यहोवा के दिन को धर्मशास्त्र में व्यक्त अन्य दिवसों की तुलना में समझना आवश्यक है। आज हम जिस समय में वास करते हैं, उसे धर्मशास्त्र में मनुष्य का दिन कहा गया है। इसका आरंभ नबूकदनेस्सर के समय से आरंभ हुआ है और प्रभु यीशु ने इसे अन्य जातियों का समय भी कहा है। लूका रचित सुसमाचार 21:24 में प्रभु यीशु ने कहा, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। आज मनुष्य न्याय करता है, इसलिए यह समय मनुष्य का दिन है। हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, परंतु परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। उसका नाम तो केवल कसम खाने और निंदा करने के लिए ही रह गया है। जी हाँ, मनुष्य के दिन के संबंध में डॉक्टर लुइस पेरी शॉफर कहते हैं, यह विषय अनुवादों और अनुवादकों द्वारा कभी कभी दुविधा का विषय बना दिया जाता है, जिसका उल्लेख नए नियम में केवल एक ही बार हुआ है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 4:3 में लिखा है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। यहां मनुष्यों के न्याय का अर्थ है आज के युग में मनुष्य की राय, जिसका उचित अनुवाद होगा मनुष्य का दिन। मेरे मित्रों, आज हम मनुष्य के दिन में वास कर रहे हैं। मनुष्य सोचता है कि वह संसार की समस्याओं का निवारण कर सकता है, परंतु उसने क्या किया है? उसने तो संसार में अव्यवस्था फैला दी है। मनुष्य के पास समाधान नहीं है। संसार के महान राष्ट्रों के अगुओं का मानना है कि संसार की समस्याओं का समाधान मनुष्य के वश में नहीं है। धर्मशास्त्र एक और दिन की चर्चा करता है जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का दिन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पौलुस लिखता है, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष ठहरो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का दिन क्या है? वह दिन जिस दिन वह अपनी कलीसिया को इस संसार से उठाने के लिए आएगा। उस दिन कलीसिया प्रभु यीशु के न्यायासन के समक्ष खड़ी होगी। मेरा मुख्य पद है फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वह हमें उस दिन तक सुरक्षित रखेगा जिस दिन वह हमें इस संसार से उठाकर ले जाएगा और हम उसके समक्ष प्रतिफल पाने के लिए खड़े होंगे। यह क्या ही आनंद का समय होगा। पुराना नियम और नया नियम दोनों ही प्रभु के दिन की चर्चा करते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। थिस्सलुनीके की कलीसिया के मन में डर था कि प्रभु के आने पर वे पीछे न रह जाएं या न छूट जाएं। पौलुस उन्हें विश्वास दिलाता है कि वे प्रभु के दिन में नहीं होंगे। मेरे प्रियो, योएल यहोवा के दिन को स्पष्ट करता है। वह कहता है कि यहोवा का दिन अंधकारमय, विषादपूर्ण और कष्ट का समय होगा। इब्रानियों का सोचना था कि वे तत्काल ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और जीवन पूर्ण रूप से कष्ट मुक्त होगा, परंतु योएल कहता है कि यहोवा के दिन का आरंभ रात में होगा, अंधकार में। अंधकार का अर्थ है महाक्लेश। महाक्लेश का समय इन टिड्डियों के समान होगा जो 4 दल बनाकर आई हैं, प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवारों के समान जो महाक्लेश के समय सवारी करेंगे। तदोपरांत प्रभु यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा, तब उसके और उसकी उपस्थिति के प्रकाश में सब प्रवेश करेंगे। यह पुराने नियम की शिक्षा है। मेरे मित्रों, आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण बाइबल पढ़ना कैसा महत्वपूर्ण है। एक बार मुझे किसी ने पत्र लिखकर कहा, प्रभु का दिन मुझे समझाना है। उसने संपूर्ण धर्मशास्त्र के पद संदर्भित किए, परंतु योएल का एक भी पद नहीं दिया। वह नहीं जानता था कि योएल प्रमुख है और पहला लिखने वाला भविष्यद्वक्ता भी यही है। आप योएल से हटकर प्रभु का दिन समझा नहीं सकते हैं। आपकी व्याख्या को योएल के योजना में उचित रूप से समझना है, उसको अध्ययन करना है, ताकि आप इसकी बातों को समझा सकें और समझ सकें। उसके बाद आने वाले सब भविष्य वक्ताओं ने इस विषय में काफी कुछ कहा है। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि यह एक मुख्य शब्दावली है जिसका उपयोग धर्मशास्त्र में निरंतर किया जाता है। मेरे प्रियो, सारांश यह है कि हम पहला देखते हैं मनुष्य का दिन आज का समय है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का दिन कलीसिया के उठाए जाने का दिन है, तीसरा प्रभु के दिन का आरंभ महाक्लेश से होगा। जैसे हमने समय को विभिन्न दिनों में विभाजित किया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी समय को विभिन्न युगों में विभाजित किया हुआ है। यह मनुष्य की धारणा नहीं, परमेश्वर का वचन है। यहोवा का दिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:10 में व्यक्त प्रभु का दिन नहीं है। मेरे मित्रों, यह प्रभु का दिन सप्ताह का पहला दिन है। कुछ लोगों के विचार में ये दोनों दिन एक ही हैं, क्योंकि शब्द एक से हैं। यदि आप दो शब्दों को लेकर पलट दें तो उनका अर्थ बदल जाता है। अतः यहाँ ये दोनों दिन भिन्न हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। योएल नबी की पुस्तक 1:16 में लिखा है, क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? योएल टिड्डियों की ही चर्चा करता है। परमेश्वर के भवन में अब आनंद और हर्ष नहीं था। मुझे बड़ी बड़ी सभाओं में और बड़ी कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए बुलाया जाता है और मुझे अवसर मिलता है, और मैंने वहां विषाद ही देखा है। यद्यपि वहां आशा का वातावरण तो होता है, परंतु आनंद नहीं था। मुझे एक बार एक श्रोता ने कहा कि वह जानता है मैं श्रोताओं में आनंद उत्पन्न करने के लिए चुटकुला भी सुनाना चाहता हूं और सुनाता हूं और सुनाकर आरंभ करता हूं। वह सही कह रहा था। इसराइल में आनंद नहीं था और आज कलीसियाओं में आनंद नहीं है। आराधनाएं निरस होती जा रही हैं। योएल नबी की पुस्तक 1:17 में हम पढ़ते हैं, बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, पत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। लिखा है बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, बीज बढ़ नहीं पाए क्योंकि टिड्डियां कोपले ही खा गई थी। खत्ते गिर पड़े, वहां अनाज भरा गया था परंतु सब नाश हुआ। योएल 1:18-19 में आगे हम देखते हैं, पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं है, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूं, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। टिड्डियां की नीति थी कि सर्वनाश ढाएं, ऐसा दिखता था कि फसल सूख गई है। जी हाँ, योएल 1:20 में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, वन पशु भी तेरे लिए हांफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई। वह एक भयानक समय था, यहां तक कि पालतू पशु और जंगली जानवर भी इस विपत्ति से प्रभावित थे। इस विपत्ति का प्रकोप सब पर पड़ा था। यह भविष्य में आने वाले प्रभु के दिन का चित्रण था। मेरे प्रियो, आप उस दिन को देख करके डर जाएंगे, परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर लौटें और उससे हम बचें। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से जारी रखेंगे। इसका विषय है यहोवा के दिन की प्रतीक्षा, परमेश्वर का आग्रह, मुक्ति की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। मेरे प्रियो, यह अध्याय 1:5 से आरंभ प्रस्तावना का ही भाग है और उसी विषय की चर्चा करता है। तो आइए हम सर्वप्रथम देखें यहोवा के दिन की प्रतीक्षा। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने दाऊद को राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। और दाऊद के बाद सब भविष्यद्वक्ताओं का यह मुख्य विषय हो गया था। महान संदेश यह है कि प्रभु राज आने वाला है पृथ्वी पर, प्रभु का 1000 वर्ष का राज्य। भविष्यद्वक्ताओं के अध्ययन में हम देखते हैं कि यह विषय ऐसा है जैसे रिकॉर्ड अटक गया है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता एक के बाद एक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। अब योएल पहला लिखने वाला भविष्यद्वक्ता कहता है कि यहोवा का दिन, जिसमें प्रभु राज्य भी है, सुविधा का समय नहीं होगा। प्रभु यीशु के राज्य से पूर्व का समय महाक्लेश का समय होगा। प्रभु यीशु ने स्वयं ही कहा था, अध्याय 2 इसे स्पष्ट करेगा, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि योएल पहला लिखने वाला भविष्यद्वक्ता था जो दूर भविष्य में यहोवा का दिन देखता है। उसका आरंभ अंधकार अर्थात परमेश्वर के दंड से आरंभ होता है, और इसके बाद प्रभु यीशु आकर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करता है। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और तब हम आगे आते हैं योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको। मेरे मित्रों, पवित्र पर्वत और सियोन यरूशलेम के बारे में कहा जाता है। यहां हमें नरसिंगे के महत्व को समझना है। किसी भी विषय को समझने के लिए हमें संपूर्ण बाइबल का अवलोकन करना है। पृष्ठभूमि को समझने से हमें लेखक की बातों को सराहने की क्षमता प्राप्त होगी। नरसिंगा फूंकने का महत्व क्या है? गिनती की पुस्तक में जब इसराइल जंगल की यात्रा पर था, तब परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे चांदी के 2 नरसिंगे बनाएं। इसे हम गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। जब इसराइल जंगल में था, परमेश्वर ने नरसिंहों का उपयोग इसराइल वंशियों के प्रस्थान में काम में लिया। नरसिंगा फूंकने का अर्थ था चलने के लिए तैयार हो जाओ। जब बादल का खंभा बाहर निकले तो वे अपने डेरे उखाड़ लें और नरसिंगे की आवाज सुनी जाती। मूसा और हारून सबसे आगे चलते, उनके पीछे यहूदा के गोत्र के लोग चलते तथा साथ में वाचा का संदूक चलता। आपको स्मरण होगा कि उनकी छावनी मिलाप वाले तंबू के चारों ओर स्थित थी, हर दिशा में 3 गोत्र, और नरसिंगा फूंकने के बाद वे एक एक गोत्र करके बाहर निकलते थे। अतः संपूर्ण छावनी को चलायमान करने के लिए 7 बार नरसिंगा फूंका जाता था। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम नरसिंगा फूंकने का उल्लेख देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नरसिंगा फूंकना यहाँ कलिसिया के संबंध में है, परंतु उस समय 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में नरसिंगे का शब्द वास्तव में प्रभु यीशु की पुकार है। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, उसकी आवाज ही तुरही की सी होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिन 7 तुरहियों का वर्णन है वे कलिसिया के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि कलिसिया तो उस समय पृथ्वी पर नहीं होगी। अतः ये 7 तुरहियां इसराइल से संबंधित हैं, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में 7 बार तुरही फूंकी जाती थी जो उनके लिए प्रस्थान करने की पुकार होती थी। मेरे प्रियो, गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं कि तुरही की पुकार का विशेष अर्थ था। वे इसराइल को निर्देशन के लिए दी गई थी। गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3-7 पद में हम पढ़ते हैं, और जब वे दोनों फूंकी जाती तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग, जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। इसके बाद पद 9 में वह प्रतिज्ञा के देश में वास करने के समय के लिए निर्देश देता है, और जब तुम किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। मेरे मित्रों, अब योएल कहता है, सियोन में नरसिंहा अर्थात तुरही फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। क्यों? देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। यहां देखिए, कलीसिया को उठा लेने के बाद परमेश्वर फिर इसराइल पर ध्यान दे रहा है, जो विश्व में यहूदी विरोध का शिकार है। यह यहोवा के दिन का आरंभ है। मेरे प्रियो, यहोवा के दिन को समझना मेरे लिए और आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि हम उस दिन हम परमेश्वर को धन्य कहने पाएं और उसकी स्तुति करने पाएं कि हम महाक्लेश से बचाए जाएं। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। प्रभु आपको आशीष दे।
जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार।